अक्सर जब किसी बहुत बड़े बदलाव या किसी क्रांति की बात होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में धमाके, गति, शोर और भारी उथल-पुथल की तस्वीरें आती हैं।
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कुछ नया बनाने के लिए सब कुछ टूटना जरूरी है।
सही का मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज का तेजी से हिलना जरूरी है। पर ये सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर किसी भी महान परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो ना हो जो सबसे ज्यादा शोर मचाती
ये बहुत ही दिलचस्प विचार है।
है ना,
हाँ
बल्कि वो हो जो बिल्कुल शांत, स्थिर और मतलब नजरों से एकदम ओझल है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। हमारे पास गणपत व्यास जी द्वारा लिखा गया एक बेहद विचारोत्तेजक लेख है, कूर्मावतार, समुद्र मंथन और विष्णु का कछुआ रूप।
हाँ और ये लेख सिर्फ एक प्राचीन कथा का कोई साधारण पुनर्कथन नहीं है।
बिल्कुल नहीं, इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ही यह समझना है कि कैसे ब्रह्मांडीय परिवर्तन की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ऊर्जा, संतुलन, मानव मनोविज्ञान और यहाँ तक कि विकासवाद का एक छिपा हुआ आधार है। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं।
इस लेख की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये पौराणिक प्रतीकों को एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ढांचे में रखकर देखता है। कहानी एक ब्रह्मांडीय संकट से शुरू होती है।
ब्रह्मांडीय संकट मतलब समुद्र मंथन की जरूरत ही क्यों पड़ी?
स्रोत के अनुसार जब देवों के भीतर अहंकार आ गया ना, तो एक शाप के कारण उन्होंने अपनी पूरी शक्ति खो दी।
ओ, पूरी शक्ति।
हाँ पूरी की पूरी। अब इसे अगर ऊर्जा के नजरिए से देखें तो ये एक तरह का एंट्रोपी या कह सकते हैं पतन है। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ चुका है, रक्षक कमजोर हो गए हैं।
मतलब पूरी व्यवस्था ढहने की कगार पर है।
बिल्कुल, और शक्तिहीनता के इस चरम बिंदु पर अस्तित्व को बचाने के लिए विष्णु ने देवों को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र का मंथन करके अमृत निकालना होगा, पर शर्त ये थी कि देवों को ये काम असुरों के साथ मिलकर करना होगा।
एक मिनट, असुरों के साथ? मतलब ये तो ऐसा है जैसे अगर इसे आज की कॉरपोरेट दुनिया के चश्मे से देखें तो ये ऐसा है जैसे कोई विशाल कंपनी पूरी तरह दिवालिया होने वाली हो।
हाँ, जिसके पास कोई संसाधन नहीं बचे हैं।
बिल्कुल, और ऐसे में वो कंपनी अपने सबसे कट्टर और खूंखार प्रतिद्वंद्वी के साथ एक पार्टनरशिप कर ले। दोनों को मालूम है कि अगर वे मिलकर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो दोनों का वजूद मिट जाएगा।
सही कहा, ये एक बहुत ही हताशा भरा लेकिन बेहद जरूरी गठबंधन है।
दोनों तरफ से मजबूरी है।
हाँ, और इस गठबंधन में तनाव का स्तर एकदम चरम पर है। दो विपरीत विचारधाराएं जो एक दूसरे को नष्ट करना चाहती हैं, उन्हें एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना है। अब समुद्र को मथने के लिए उपकरणों की जरूरत थी।
उपकरणों के बिना तो मंथन हो नहीं सकता।
बिल्कुल, श्रोत में स्पष्ट किया गया है कि मथानी यानी चर्निंग रॉड के रूप में मंदार पर्वत को चुना गया। यहां जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मंदार पर्वत महज किसी किसी प्राचीन कवि की कल्पना नहीं है।
अच्छा, तो क्या इसका कोई भौतिक प्रमाण है?
हाँ ना, बिहार के बांका जिले में आज भी 700 से 800 फीट ऊंची ग्रेनाइट की एक विशाल पहाड़ी है जिसे मंदार हिल कहा जाता है।
अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।
और मजे की बात यह है कि इस पहाड़ी की चट्टानों पर कुछ ऐसे कुंडलित निशान मौजूद हैं जिन्हें वासुकी नाग के निशान माना जाता है।
मतलब ये कथा को एक भौतिक और भौगोलिक यथार्थ से जोड़ देता है। एक विशाल ग्रेनाइट पर्वत मथानी बन गया और फिर रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी नाग का उपयोग किया गया।
बिल्कुल, असुरों ने उनका सिर पकड़ा और देवों ने पूंछ।
ये तो मतलब इस पूरी यांत्रिक प्रक्रिया की कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक विशाल पर्वत को मथानी बनाना और एक महाकाय नाग को रस्सी की तरह खींचना, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना थी।
और इंजीनियरिंग परियोजना के साथ साथ ये सहयोग का एक बहुत बड़ा परीक्षण भी था। असुरों का सिर की तरफ रहने का हट उनके अहंकार का प्रतीक था।
और देवों का पूंछ की तरफ रहना
वो कूटनीतिक विनम्रता को दर्शाता है। एक तरफ से खींचना, फिर दूसरी तरफ से खींचना, विपरीत दिशाओं से लगने वाला ये बल ही मंथन की असली गति पैदा कर रहा था।
लेकिन
लेकिन क्या,
जैसे ही ये विशालकाय मशीनरी काम करने लगी ना, भौतिकी का एक बुनियादी नियम आड़े आ गया।
यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मंथन शुरू हो चुका है, पूरी ताकत लगाई जा रही है, लेकिन मंदार पर्वत एक विशालकाय और भारी संरचना है।
हाँ, और उसके नीचे कोई ठोस जमीन नहीं है।
बिल्कुल, सिर्फ अथाह गहरा समुद्र है। तो भारी वजन और कोई आधार ना होने के कारण वो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। एकदम सही, सारी योजना विफल होने वाली थी। ये वो पल था जहां गति और शोर, मतलब दोनों ही कुछ काम नहीं आ रहे थे।
और ठीक इसी संकट के क्षण में भगवान विष्णु का दूसरा अवतार दृश्य में आता है, कूर्म अवतार, यानी एक विशाल काय कछुआ।
हाँ, कछुए के रूप का ये चुनाव अत्यधिक दार्शनिक महत्व रखता है। किसी और विशाल जीव जैसे शार्क या वेल का रूप क्यों नहीं लिया गया?
ये सोचने वाली बात है,
क्योंकि कछुआ एक विशिष्ट ज्यामिति और स्वभाव का प्रतीक है। उसकी पीठ की ढाल अविश्वसनीय रूप से मजबूत और चौड़ी होती है,
जो वजन को समान रूप से बांट सकती है, इंजीनियरिंग में जिसे हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
बिल्कुल, और कछुआ बिना किसी आक्रामकता के एकदम मौन रहकर काम करता है। विष्णु ने उसी विशाल कछुए का रूप लिया, गहरे समुद्र के तल में गए और उस डूबते हुए पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया।
मतलब इस घटना के यांत्रिक पहलू को सच में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कॉज एंड इफेक्ट की बात करें तो बिना इस स्थिर आधार के वो पूरा ऑपरेशन उसी क्षण खत्म हो जाता।
हाँ, पर्वत नीचे जाता रहता और मंथन रुक जाता।
तो ये कछुआ ही वो ग्राउंडिंग फोर्स था जिसने उस पूरी ऊर्जा को एक जगह पर साधे रखा।
सही कहा, और ये इस बात का सटीक रूपक है कि किसी भी बड़े बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मजबूत, स्थिर और शांत आधार का होना कितना अनिवार्य है। अक्सर होता क्या है कि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो ध्यान सिर्फ सतह की उथल पुथल पर जाता है।
हाँ, जो चीजें शोर मचा रही होती हैं।
बिल्कुल, लेकिन असली ताकत हमेशा पृष्ठभूमि में, गहराई में, और मतलब बिल्कुल चुपचाप काम कर रही होती है। कूर्म अवतार की इसी अदृश्य स्थिरता ने मंथन को संभव बनाया।
अब आधार सेट हो चुका है, पर्वत कछुए की पीठ पर सुरक्षित रूप से घूम रहा है, वासुकी नाक को पूरी शक्ति से खींचा जा रहा है। जरा उस घर्षण के बारे में तो सोचिए।
बहुत भयंकर घर्षण।
श्रोत बताता है कि जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वासुकी नाग के शरीर से शक्तिशाली धुआं और ऊर्जा निकलने लगी। जब कोई पुरानी चीज टूटती है ना, तो बहुत ज्यादा ऊष्मा और तनाव पैदा होता है।
और ये ऊष्मा और तनाव ही उत्प्रेरक का काम करते हैं। बिना घर्षण के कुछ नया नहीं बन सकता। इस मंथन से कई अनमोल रत्न निकले, लेकिन
सबसे पहले अमृत नहीं निकला है ना?
बिल्कुल नहीं। जो चीज सबसे पहले निकली वो था हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे घातक विष,
जिसे भगवान शिव ने पिया था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है।
सही कहा। जब विष संभल गया, उसके बाद ही ब्रह्मांडीय समृद्धि के प्रतीक सामने आने लगे। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो समृद्धि के प्रतीक हैं। फिर कामधेनु निकली।
कामधेनु, वो जो दिव्य गाय है।
हाँ, प्रचुरता की प्रतीक। फिर ऐरावत नाम का विशालकाय हाथी निकला, जो अपार शक्ति को दर्शाता है। उसके बाद कौस्तमणि और अंततः अमृत सामने आया, अमरता का लक्ष्य।
तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प होगा कि क्या ये सिर्फ खजाने की कहानी है या इस विष और रत्नों के पीछे कोई और गहरा अर्थ है।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक कथा बन जाती है।
अच्छा, मनोविज्ञान कैसे?
कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये समुद्र मंथन वास्तव में हमारे आंतरिक मंथन या इनर जर्नी की प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है।
मतलब ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है।
हाँ, ये अथाह समुद्र हमारा अपना अवचेतन मन है, मंदार पर्वत हमारा दृढ़ संकल्प और प्रयास है, और वासुकी नाग हमारी वे इच्छाएं और आंतरिक संघर्ष हैं जिन्हें हम लगातार खींचते रहते हैं।
अरे वाह, ये नजरिया तो इस कथा को पूरी तरह से मतलब बदल ही देता है। जब कोई इंसान अपनी किसी पुरानी आदत को बदलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो असल में अपने मन को मथ रहा होता है।
बिल्कुल,
लेकिन फिर अमृत से पहले हलाहल विष का आना क्या दर्शाता है?
यही तो इस प्रक्रिया का सबसे यथार्थवादी हिस्सा है। जब मन का मंथन शुरू होता है ना, तो सबसे पहले अच्छी चीजें बाहर नहीं आती।
तो क्या आता है?
सबसे पहले दबे हुए आघात, गहरे डर, असुरक्षाएं और नकारात्मकता सतह पर उभरती है। यही वो हलाहल विष है।
मतलब जो चीजें हम दबाकर रखते हैं।
हाँ, और अगर इस शुरुआती नकारात्मकता या दर्द से घबराकर प्रयास छोड़ दिया जाए तो मंथन वहीं रुक जाएगा। विष को स्वीकार करने के बाद ही मन में स्पष्टता आती है
और तब जाकर मानसिक रत्न बाहर आते हैं। मतलब कामधेनु केवल एक गाय नहीं है, बल्कि ये मन की वो अवस्था है जहां नए विचार जन्म लेते हैं।
बिल्कुल सही, और ऐरावत वो अडिग मानसिक शक्ति है।
और अंत में अमृत, जो शायद आत्म जागरूकता या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है।
हाँ, और इस पूरे मानसिक उथल पुथल में जब अंदर लड़ाई चल रही हो तब भी एक कूर्म अवतार की जरूरत होती है, एक ऐसा आंतरिक धैर्य जो इंसान को टूटने न दे।
मतलब ये आंतरिक स्थिरता ही सबसे जरूरी चीज है। हमारे भीतर इच्छा बनाम अनुशासन और अहंकार बनाम ज्ञान का युद्ध तो चलता ही रहता है।
बिल्कुल, देव और असुर हमारे ही भीतर की विरोधी प्रवृत्तियां हैं। अब अगर हम इस मनोविज्ञानिक विश्लेषण से थोड़ा आगे बढ़ें,
जी विज्ञान की तरफ।
हाँ, लेख में दशावतार और आधुनिक विकासवाद, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं, उसके बीच एक बहुत ही गहरा संबंध दिखाया गया है।
लेकिन एक मिनट, क्या प्राचीन कथाओं की तुलना चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन से करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता?
ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप क्रम पर ध्यान दें तो ये महज संयोग नहीं लगता। दशावतार का पहला अवतार कौन सा है?
मत्स्य अवतार, यानी मछली।
बिल्कुल, और आधुनिक जीव विज्ञान मानता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुई। जीवन पूरी तरह पानी पर निर्भर था।
हाँ, ये तो विज्ञान का बेसिक सिद्धांत है।
इसके ठीक बाद जो दूसरा अवतार आता है वो है कूर्म, यानी कछुआ।
ओह, और कछुआ पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है, एम्फिबियस जीव।
बिल्कुल, विकासवाद के अनुसार एक बहुत बड़ा संक्रमण काल वो था जब जलीय जीवों ने धीरे धीरे सूखी जमीन की ओर बढ़ना शुरू किया।
मतलब कछुआ उस ट्रांजिशन या संक्रमण का एक जैविक प्रतिनिधित्व है, जल की अनिश्चितता से निकलकर जमीन की ठोस स्थिरता की ओर आना। ये तो बहुत ही अद्भुत है।
हाँ ना, जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जल की गहराई के साथ साथ थल के स्थिर आधार की आवश्यकता थी। और इस कथा का विज्ञान सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं है।
अच्छा, और क्या है इसमें?
अगर हम इसे आधुनिक भौतिकी यानी फिजिक्स के सिद्धांतों पर कसें तो ये कथा एक मशीन की तरह काम करती है। किसी भी टर्बाइन को मान लीजिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम हो, उसे ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए?
एक स्टेटर और एक रोटर की आवश्यकता होती है। कोई भी घूमने वाली चीज यानी रोटर तभी ऊर्जा पैदा कर सकती है जब उसे एक ऐसी जगह पर फिक्स किया जाए जो बिल्कुल न हिले, यानी स्टेटर।
बिल्कुल सटीक, विज्ञान ये स्थापित करता है कि ऊर्जा निकालने के लिए एक स्थिर आधार अनिवार्य है। हवा में तैरती हुई कोई चीज ऊर्जा पैदा नहीं कर सकती।
न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
हाँ, देव और असुर वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस हैं जो घर्षण पैदा कर रहे हैं। मंदार पर्वत वो रोटर है जो घूम रहा है, और कूर्म अवतार वो स्टेटर है जो उस पूरी भयानक गतिज ऊर्जा को थामे हुए है।
बिना उस स्टेटर के वो सारा बल शून्य में खो जाता। मतलब ये कथा एक साथ भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को एक ही जगह समेटे हुए है।
बिल्कुल, ब्रह्मांड में कोई भी नई ऊर्जा बिना घर्षण के पैदा नहीं हो सकती, और उस विरोध को सहने के लिए कूर्म की वो मौन स्थिरता अनिवार्य है।
इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है।
वो क्या?
आज की दुनिया की ओर देखने पर लगता है कि चारों ओर सिर्फ गति का महिमा मंडन हो रहा है, हर कोई भाग रहा है।
हाँ, एक निरंतर दौड़ लगी हुई है। मतलब अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। सही कहा, इस तेज रफ्तार में क्या हम उस स्थिरता को पूरी तरह से भूल नहीं गए हैं? कूर्म अवतार ये याद दिलाता है कि बिना मजबूत नींव के कोई भी विकास केवल पतन की ओर ले जाता है।
ये बात आज के आर्थिक ढांचे या मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रासंगिक लग रही है। हम लगातार रस्सी को दोनों तरह से खींच रहे हैं।
हाँ, मंथन तेज होता जा रहा है,
लेकिन उस कछुए की परवाह कहीं पीछे छूट गई है, जिसका परिणाम ये है कि हमारे संस्थान, रिश्ते और मानसिक शांति सब डूब रहे हैं।
यही स्रोत का मुख्य बिंदु है। जब बार या अराजकता बढ़ जाए तो तेज दौड़ने के बजाय अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। स्थिरता खोजना सबसे पहला कदम होना चाहिए।
इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि समुद्र मंथन सिर्फ देवताओं और दानवों की लड़ाई नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
ये प्रगति का एक ब्लूप्रिंट है। विकास के लिए विरोधी ताकतों का टकराव जरूरी है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक अदृश्य स्थिर नींव की आवश्यकता होती है। ये कथा ये भी सिखाती है कि प्रगति के रास्ते में सबसे पहले नकारात्मकता रूपी विष का ही सामना करना पड़ता है।
हाँ, उसे पार किए बिना अमृत तक नहीं पहुंचा जा सकता।
आज के शोर शराबे वाले युग में कूर्म अवतार हमें यही सिखाता है कि जो शक्तियां दुनिया को दिखाई नहीं देती, जैसे भीतर की शांति और अपनी जड़ों से जुड़े रहना, वही सबसे बड़े बदलावों का आधार बनती हैं।
बिल्कुल सही निष्कर्ष है।
अब इस विषय के हर पहलू को खंगालने के बाद अंत में एक ऐसा विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए सांचे में डाल देता है।
वो क्या है?
हमने ये मान लिया कि हमारे भीतर देव और असुर यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों लगातार मंथन कर रहे हैं, और कूर्म वो आंतरिक स्थिरता है जो इसे साधे हुए है। लेकिन
लेकिन क्या
क्या होगा अगर इस संघर्ष में कोई एक शक्ति पूरी तरह से हावी हो जाए? मतलब जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये मंथन, ये घर्षण हमेशा के लिए रुक जाए?
ये तो बहुत गहरा सवाल है।
अक्सर हम एक ऐसी अवस्था की कामना करते हैं जहां कोई संघर्ष ना हो, जहां पूर्ण शांति हो। लेकिन क्या उस पूर्ण शांति का मतलब विकास का अंत है?
शायद हाँ।
क्या ये लगातार चलने वाला घर्षण, ये दर्द और संघर्ष ही वास्तव में हमारे जीवित होने का असली प्रमाण है? अगर भीतर कोई मंथन ही न हो तो क्या किसी अमृत के बनने की कोई गुंजाइश बचेगी?
ये सच में सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, इस सवाल को अपने भीतर मथने दें, इस विचार को मन के उस अथाह समुद्र में गूंजने दें। इसी गहरे प्रश्न के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने और साथ में इतनी गहराई तक जाने के लिए धन्यवाद।